نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فتح مکہ کے بعد اب ہم دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تیسرا مرحلہ. ایک ایک مرحلے میں کیا کچھ ہے. اللہ کے نبی کو اللہ نے ایک بہت بڑے کام پہ دنیا میں بھیجا, آپ نے وہ کام کیا, اللہ نے آپ سے کرا لیا. اب دیکھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں فتح مکہ کے بعد کیا کچھ ہوا. پیج ہے 560, تیسرا مرحلہ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ زندگی کا آخری مرحلہ ہے, یعنی آپ کی اسلامی دعوت کے نتائج کی نمائندگی کرتا ہے, جنہیں آپ نے تقریباً 23 سال کی طویل جد و جہد, مشکلات و مشقت, ہنگاموں اور فتنوں, فسادات اور جنگوں اور خون ریز مارکوں کے بعد حاصل کیا تھا. کیا پتہ چلا کہ اتنی محنتیں کریں اس کے بعد ہی نتائج نکلتے ہیں. تو محنت, محنت اور محنت. ان طویل برسوں میں فتح مکہ سب سے اہم ترین کامیابی تھی جو مسلمانوں نے حاصل کی. اس کی وجہ سے حالات کا دھارا بدل گیا اور عرب کی فضا میں تغیر آ گیا. یہ فتح در حقیقت اپنے ماں قبل اور ماں بعد, یعنی اپنے سے پہلے اور اپنے سے بعد کے دونوں زمانوں کے درمیان حد فاصل کی حیثیت رکھتی ہے, یعنی ایک کرائیٹیرین بن گئی کہ اس سے پہلے کے حالات کیا تھے اور اس کے بعد کے کیا ہوں گے. چونکہ قریش اہل عرب کی نظر میں دین کے محافظ اور انصار تھے اور پورا عرب اس بارے میں ان کے تابع تھا, اس لیے قریش کی سپر اندازی یعنی سرنڈر کرنے کے معنی یہ تھے کہ پورے جزیرہ نما یورپ میں بت پرستانہ دین کا کام تمام ہو گیا. تو کیا پتہ چلا کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کوئی ایسا کام لے لیتا ہے جو غیر متوقع ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد پھر خیر کے بہت سارے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں. اور خاص طور پہ آپ دیکھیے کہ مکہ کو اور عرب کو بتوں سے پاک کرنا, یہ اتنا بڑا کام تھا جو اللہ نے ابھی تک اپنے نبی اور ان کے ساتھیوں سے لیا. اب یہ آخری مرحلہ کیا ہے؟ یہ آخری مرحلہ دو حصوں میں تقسیم ہے. ایک ہے مجاہدہ و قتال اور دوسرا قبول اسلام کے لیے قوموں اور قبیلوں کی دوڑ. یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی اور آپ کو بھی اس میں ورکنگ میتھڈولوجی سمجھ آ رہی ہے کہ جب ایک تحریک اپنے عروج پہ آتی ہے تو اس کے بعد پھر کیا کرنا ہوتا ہے. یہ دونوں صورتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں اور اس مرحلے میں آگے پیچھے بھی اور ایک دوسرے کے دوران بھی پیش آتی رہی ہیں. البتہ ہم نے کتابی ترتیب یعنی سن وائز کے پہلے کیا ہوا, بعد میں کیا ہوا, کتابی ترتیب یہ اختیار کی ہے کہ ایک کو دوسرے سے الگ ذکر کریں. چونکہ پیچھے مارکے اور جنگ کا تذکرہ چل ہی رہا تھا اور اگلی جنگ اسی کی ایک شاخ کی حیثیت رکھتی ہے, اس لیے یہاں جنگوں ہی کا ذکر پہلے کیا جا رہا ہے. مطلب یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اب مکہ کے فتح کے بعد کی زندگی میں دو بڑے کام تھے. ان میں سے ایک کام تو وہی قتال اور مجاہدے تھے جو بدر سے شروع ہوئے ہی تھے, اور دوسری طرف لوگوں کو اسلام کی طرف آنا. اور اب لوگ کیسے یدخلون فی دین اللہ افواج ہے, تو ہم ترتیب میں پہلے جنگوں کو پڑھیں گے اور پھر انشاءاللہ دوسرا ٹاپک ان کے بعد میں آئے گا. تو بڑی جنگوں میں بڑی جنگ غزوہ حنین جو فتح مکہ کے بعد ہوئی, آئیے اس کو دیکھتے ہیں. 561 غزوہ حنین. مکہ کی فتح ایک اچانک ضرب کے بعد حاصل ہوئی تھی جس پر عرب حیران تھے, اور ہمسایہ قبائل میں اتنی سکت نہ تھی کہ اس اچانک واقعے کو دور کر سکیں یا اس کے لیے کچھ کریں. اس لیے بعض اڑیل طاقتور اور متکبر قبائل کو چھوڑ کر بقیہ سارے قبیلوں نے سپر ڈال دی یعنی سرنڈر کر لیا. اڑیل قبیلوں میں حوازن اور ثقیف سر فہرست تھے. اس کے ساتھ مضر, جسم اور سعد بن بکر کے قبائل, بنو ہلال کے بھی کچھ لوگ شامل ہو گئے تھے. ان سب قبیلوں کا تعلق قیسے ایلان سے تھا. ان نے یہ بات اپنی خودی اور عزت نفس کے خلاف معلوم ہو رہی تھی کہ مسلمانوں کے سامنے سپر انداز ہو جائیں, اس لیے ان قبائل نے مالک بن عوف نصری کے پاس جمع ہو کر طے کیا کہ مسلمانوں پر حملہ یعنی یلغار کر دی جائے. تو کوئی کل آپ سے پوچھے کہ غزوہ حنین کی وجہ کیا تھی یا سبب کیا تھا, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مکہ کی فتح اتنی اچانک تھی اور اتنی بڑی تھی کہ اکثر لوگ تو دب گئے, لیکن کچھ قبیلے, کچھ لوگ سٹبن ہوتے ہیں, ان کو اپنی انا پہ یہ چوٹ پڑتی ہوئی دیکھی کہ اللہ کے نبی نے اتنی آسانی سے مکہ کو فتح کیا, تو انہی جذبات سے بھرے ہوئے وہ مسلمانوں پر حملے کے لیے تیار ہو گئے. دشمن کی روانگی اور اوتاس میں پڑاؤ. اس فیصلے کے بعد مسلمانوں سے جنگ کے لیے ان کی روانگی عمل میں آئی तो जनरल कमांडर मालिक बिन औफ लोगों के साथ इनके माल मवेशी और बाल बच्चे भी खींच लाया और आगे बढ़कर वादी और तास में खैमा जन हुआ। ये हुनैन के करीब बनु हवाजन के इलाके में एक वादी है, लेकिन ये वादी हुनैन से अलहदा है। हुनैन एक दूसरी वादी है जो जुल मजाज के बाजू में वाक़े है, यानी उसके साथ। वहां से अरफात होते हुए मक्का का फासला 10 मील से ज्यादा है। मुराद जय के ये दुश्मनी में भरे हुए अपने बच्चों और जानवरों को भी साथ ही ले आए और बिल्कुल करीब ही आकर एक जगह पड़ाव डाल दिया। माहिर जंग की जुबानी सिपह सालार की तगलीत, क्या मुराद है कि अब कुछ लोग स्पेशलाइज किए होते थे कि कहाँ जंग के लिए रुकें, कहाँ लश्कर में पड़ाव डालना है, यानी जंग की जो स्ट्रेटजीज हैं उसको सेट करने के लिए कुछ लोग अंदाजे लगाते हैं। लेकिन इस मामले में क्या हुआ, आइए देखते हैं। तगलीत वही है जिसे लफ्ज़ गलत है, यानी रॉन्ग असेसमेंट। औतास में उतरने के बाद लोग कमांडर के पास जमा हुए, उनमें दुरैत बिन सम्मा भी था। ये बहुत बूढ़ा हो चुका था और अपनी जंगी वाकफियत और मशवरे के सिवा कुछ करने के लायक न था, लेकिन वसलन बड़ा बहादुर और माहिर जंगजू रह चुका था। इसने दरियाफ्त किया, तुम लोग किस वादी में हो? जवाब दिया कि औतास में, यानी खबर लेना चाह रहे हैं ना। इसने कहा, यह सवारों की बेहतरीन जोलानगाह है, ना पथरीली और खाईदार है, ना भुरभुरी ना शेप, यानी कि अच्छी जगह है। लेकिन क्या बात है कि मैं ऊँटों की बिलबुलाहट, गधों की ढींच और बच्चों का गिरिया और बकरियों की मिमियाहट सुन रहा हूँ। लोगों ने कहा, मालिक भी नौ फौज के साथ इनकी औरतें बच्चे और माल मवेशी भी खींच लाया। इस पर दुरैत ने मालिक को बुलाया और पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया है? उसने कहा, मैंने सोचा हर आदमी के पीछे इस कहल और माल को लगा दूं ताकि वो इनकी हिफाजत के जज्बे के साथ जंग करे। दुरैत ने कहा, वल्लाही तुम निरे भेड़ों के चरवाहे ही हो, यानी उसको बुरा भला का उसकी इस राय से इख्तलाफ किया। भला शिकस्त खाने वाले को भी कोई चीज रोक सकती है? देखो, अगर जंग में तुम गालिब रहते हो तो भी तुम्हारे शमशीरों सना से मुसल्ला आदमी ही मुफीद है, और अगर शिकस्त खा गए तो फिर तुम्हें अपने अहल और माल के सिलसिले में रुस्वा होना पड़ेगा, यानी फिर ये सब औरतें और ये चीज़ें जानवर माल गनीमत बनकर मुसलमानों के पास चला जाएगा। ये मुराद था। फिर दुरैत ने बात कबाइल और सरदारों के मुतल्लिक सवाल किया और इसके बाद कहा, ए मालिक, तुमने बनु ख्वाजन की औरतों और बच्चों को सवारों के मद्दे मुकाबिल लाकर कोई सही काम नहीं किया। इन्हें इनके इलाके के महफूज मकामात और इनकी कौम की बालाई जगहों में भेज दो। इसके बाद घोड़ों की पीठ पर बैठकर बददीनों से टक्कर लो। किनको कह रहे हैं बददीन? मुसलमानों को। अगर तुमने फतह हासिल की तो पीछे वाले तुमसे आन मिलेंगे, और अगर तुम्हें शिकस्त से दो चार होना पड़ा तो तुम्हारे अहलो याल और माल मवेशी बहरहाल महफूज रहेंगे, यानी उसने अपने हिसाब से अच्छा मशवरा दिया। लेकिन जनरल कमांडर मालिक ने यह मशवरा मुस्तरद कर दिया, रिजेक्ट कर दिया और कहा, खुदा की कसम ऐसा नहीं कर सकता, तुम बूढ़े हो चुके हो और तुम्हारी अकल भी बूढ़ी हो चुकी है। वल्लाही या तो ख्वाजन मेरी इताअत करे या मैं इस तलवार पर टेक लगा दूंगा और ये मेरी पीठ के आर पार निकल जाएगी, यानी जज्बाती हो गया, इमोशनल। दर हकीकत मालिक को ये गवारा ना हुआ कि इस जंग में दुरैत का भी नाम या मशवरा शामिल हो। यहाँ देखिए, जैसे बाज़ दो पर्सनैलिटी क्लैशेज होते हैं ना, तो उसकी वजह से लोग अपना नुकसान तो कर लेते हैं लेकिन अपनी अना को पीछे नहीं करते। ख्वाजन ने कहा, हमने तुम्हारी इताअत की। इस पर दुरैत ने कहा, यह ऐसी जंग है जिसमें ना सही तौर पर शरीक हूँ और ना बिल्कुल अलग हूँ। और इसने कुछ अशार भी कहे, या लई तनिफी हजुन, काश मैं इसमें जवान होता, तगो ताज और दौड़ धूप करता, यानी स्ट्रगल करता। टांग के लंबे बालों वाले और दरमियाने किस्म की बकरी जैसे घोड़े की क्यादत करता, यानी उसको अफसोस था कि मेरी राय क्यों नहीं मानी गई, लेकिन इसके बावजूद अलग नहीं हुआ। ये भी एक उसकी अक्लमंदी थी। हर चीज़ पर हर बंदा मुत्तफिक नहीं हो सकता। बहुत सारे काम जिंदगी में आपको वही करने पड़ते हैं जिस पे आप 100% कन्विंस नहीं होते, लेकिन यूनिटी और इज्तमाईत को नहीं तोड़ना बल्कि अपनी राय को पीछे करके उसको मानना है, और सुलह हुदैबिया खुद इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। दुश्मन के जासूस। इसके बाद मालिक के वो जासूस आए जो मुसलमानों के हालात का पता लगाने पर मामूर किए गए थे। इनकी हालत ये थी कि इनका जोड़ जोड़ टूट फूट गया था। मालिक ने कहा, तुम्हारी तबाही हो, तुम्हें ये क्या हो गया है? इसने कहा, हमने कुछ चितकबरे, यानी थोड़े से सफ़ेद और थोड़े काले घोड़े, मुराद एक ऐसे घोड़े जो दो रंगों के थे, हमने चितकबरे घोड़ों पर सफ़ेद इंसान देखे हैं, और इतने में वल्ला ही हमारी वो हालत होगी जिसे तुम देख रहे हो, यानी अल्लाह की तरफ से एक मुसलमानों की मदद थी इसमें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जासूस। इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दुश्मन की रवानगी की खबरें मिल चुकी थी। चुनाचे आपने अबू खदरत असलमी रदी अल्लाह अन्हों को ये हुक्म देकर रवाना फरमाया कि लोगों के दरमियान घुस कर क्याम करें और इनके हालात का ठीक ठीक पता लगा कर वापस आए और आपको इत्तला दें, और उन्होंने ऐसा ही किया। इससे पता चलता है कि आप एक बेदार मगज़ लीडर थे और घबराते नहीं थे, रिस्क लेते थे, और लीडर्स को रिस्क लेना पड़ेगा। बहुत सारे तहफ़ुज़ात और बहुत सारी सिक्योरिटीज़ हमेशा काम नहीं करती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हुनैन की तरफ आते हैं। स्नीचर यानी हफ्ता 6 शवाल सन 8 हिजरी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से कूच फरमाया। आज आपको मक्का में आए हुए 19वां दिन था। 12,000 की फ़ौज आपके हमरकाब थी, 10,000 वो जो फतेह मक्का के लिए आपके हमराह तशरीफ़ लाई थी, और 2,000 बाशिंदगान मक्का से जिनमें अक्सरियत नौ मुस्लिमों की थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफवान बिन उमैया से 100 जिरहें बीमा आलात और औजार उधार ली और अत्ताब बिन असीद रजी अल्लाह अन्हों को मक्का का गवर्नर मुकर्रर किया। यहाँ से कई बातें हैं सीखने की। पहली बात देखिए कि आप मक्का से आए हुए अभी सिर्फ 19 दिन हुए और आपके साथ फिर 12,000 का लश्कर था। थकते नहीं थे ये लोग, घबराते नहीं थे? अल्लाह के नबी, आप चैन क्यों नहीं लेते? नऊज़ु बिल्लाह। और हम होते तो पता नहीं कितनी दलीलें देते, देखे फिर इतना बोझ नहीं डालना, फिर इतना प्रेशर नहीं डालना, फिर घर वाले ऑफेंड होंगे। नहीं, घर वालों को साथ लेकर चलेंगे तो बड़ी बड़ी फतूहात होंगी इंशाल्लाह। और दूसरी बात देखिए, न्यू मुस्लिम्स यानी ऐसे ही कि अनट्रेंड लोग भी कभी कभी साथ रखने पड़ते हैं हालात और वक्त की नौइयत के मुताबिक। और यहाँ से ये भी सीख लीजिए कि असलहा था नहीं तो उधार लेना पड़ा, यानी मींस ना हो तो काम छोड़ना नहीं है, बल्कि कोई भी साइड का वे ढूंढ कर कोई और तरीका अख्तियार करना है। और अगली बात है कि खुद गए लेकिन अपने पीछे नॉमिनेट कर कर गए अत्ताब को, अनअटेंडेड नहीं छोड़ा अपनी जगहों को, ये मुराद है। दोपहर तो बाद एक सवार ने आकर बतलाया कि मैंने फलां और फलां पहाड़ पर चढ़कर देखा तो क्या देखता हूँ कि बनु ख्वाजन सब के सब ही आ गए, इनकी औरतें चौपाई और बकरियां सब साथ हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाते हुए फरमाया, ये सब इंशाअल्लाह कल मुसलमानों का माले गनीमत होगा। साहबा ने इतराज़ नहीं किया होगा, अल्लाह के नबी कैसे, अभी तो थकन भी नहीं उतरी। देखिए ये लीडर्स की जो खुशखबरियाँ होती हैं ना, इस पे नज़र लगानी चाहिए। वो ऐसे ही नहीं बोलते, और वो तो अल्लाह के नबी थे जिनके साथ अल्लाह ताला की ताईद शामिल होती थी, और वमा यंते को अनिल हवा थे, वही के सिवा तो बोलते भी नहीं थे अपनी मर्जी से। रात आई तो हज़रत अनस बिन अबी मरसद गनवी ने रज़ाकाराना तौर पर संतरी के फ़राइज़ अंजाम दिए यानी हिफाजत के लिए खड़े हो गए मुसलमानों के लश्कर की तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी मैन। हुनैन जाते हुए लोगों ने बेर का एक बड़ा हरा दरख्त देखा जिसको ज़ाते अनवात कहा जाता था। मुशरिकीन अरब इस पर अपने हथियार लटकाते थे, इसके पास जानवर ज़िबा करते थे और वहाँ दरगाह और मेला लगाते थे। बास फौजियों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, आप हमारे लिए भी ज़ाती अनवात बना दीजिए जैसे इनके लिए ज़ाती अनवात है। आपने फरमाया, अल्लाह अकबर, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, तुमने वैसी ही बात कही जैसी मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कही थी कि जल्लना इलाहन कमा लहुम आलिहतुन, हमारे लिए भी एक माबूद बना दीजिए जिस तरह उनके लिए माबूद हैं। ये तौर तरीके हैं, तुम लोग भी यकीनन पहलों के तौर तरीकों पर सवार हो गए। रास्ते में बास लोगों ने लश्कर की कसरत के पेश नज़र कहा था कि हम आज हरगिज़ मगलूब नहीं हो सकते, और ये बात रसूलुल्लाह पर गिरां गुजरी थी। कुरान में भी आता है ना सूरह तौबा में, इस आजबतकुम कसरतकुम, जब तुम्हें अपनी कसरत का बड़ा मान था तो उसी की तरफ इशारा है कि रिसोर्सेज और मीन्स और तैयारियां जितनी मर्जी हों कभी ना कहिए कि आज जीतेंगे, यही कहें कि माशाल्लाह या इंशाल्लाह। अल्लाह ताला के साथ अपने आप को रखना है। और ऊपर वाले वाक्य से ये भी पता चलता है कि पुरानी आते जाते जाते ही जाती हैं। बाज़ दफ़ा इंसान मुसलमान हो भी जाता है लेकिन फिर भी उसको कुछ ना कुछ चीज़ें अपनी जाहिलियत के दौर की याद रहती हैं। इस्लामी लश्कर पर तीरंदाजों का अचानक हमला। इस्लामी लश्कर मंगल और बुध की दरमियानी रात 10 शवाल को हुनैन पहुंचा, लेकिन मालिक बिन औफ यहाँ पहले ही पहुंच कर और अपना लश्कर रात की तारीकी में इस वादी के अंदर उतार कर इसे रास्तों, गुजरगाहों, खाटियों, पोशीदा जगहों और दर्रों में फैला और छुपा चुका था। और इसे ये हुक्म दे चुका था कि मुसलमान जो ही नमूदार हों इन्हें तीरों से छलनी कर देना, फिर इन पर यकदम इकट्ठे टूट पड़ना। और आप देख रहे हैं कि अक्सर जंगें शाबान, रमजान और शवाल और इसके इर्द गिर्द होती हैं। हमारे यहाँ तो रमजान से पहले ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं और ईद खत्म होने के बाद भी हमारे काम नहीं खत्म होते। जिनको काम करना होता है वो इन छोटी छोटी चीजों में नहीं उलझते। इधर सहर के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर की तरतीबो तंजीम फरमाई और परचम बांध बांध कर लोगों में तकसीम किए। फिर सुबह के झटपटे में, यानी अभी सुबह पूरी भी नहीं हुई थी और अंधेरा भी थोड़ा सा था, मुसलमानों ने आगे बढ़कर वादी हुनैन में कदम रखा। इससे भी पता चलता है कामों को अर्ली मॉर्निंग शुरू करना चाहिए, इसी में अल्लाह की मदद है। वो दुश्मन के वजूद से कतई बेखबर थे। इन्हें बिल्कुल इल्म ना था कि इस वादी के तंग दर्रों के अंदर सकीफ और ख्वाजन के जियाले इनकी घात में बैठे हैं। इसलिए वो बेखबरी के आलम में पूरे इत्मीनान के साथ उतर रहे थे कि अचानक इन पर तीरों की बारिश शुरू हो गई। फिर फौरन इन पर दुश्मन के पर्रे के परे यकदम इकट्ठे टूट पड़े। इस अचानक हमले से मुसलमान संभल न सके और इनमें ऐसी भगदड़ मची कि कोई किसी की तरफ देख भी ना रहा था। बिल्कुल फाश शिकस्त थी। यहाँ तक कि अबू सुफियान बिन हर्ब ने, जो अभी नए नए मुसलमान हुए थे, कहा, अब इनकी भगदड़ यानी मिस मैनेजमेंट समंदर से पहले ना रुकेगी, यानी लड़ते लड़ते इनको समंदरों की तरफ निकाल देंगे। और जबला या कल्दा बिन जुनैद ने चीख कर कहा, देखो आज जादू बातिल हो गया। ये इब्ने इसहाक का बयान है, बरा बिन आजिब का भी बयान यही है जो बुखारी में है, जो इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इनका इरशाद क्या है कि ख्वाजन तीर अंदाज थे, हमने हमला किया तो भाग खड़े हुए, इसके बाद हम गनीमत पर टूट पड़े तो तीरों से हमारा इस्तकबाल किया गया। वही गलती और एक इज्तिहादी खता जो ओहद में हो चुकी थी वही यहाँ दिखती है। क्या पता चला कि बार बार काम करने वालों से भी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन कभी किसी को काट के तोड़ के नहीं फेंका। और इसी तरह वक्त के साथ साथ फिर इसलाह होती ही जाती है। आप 100% कभी भी किसी चीज़ को सही नहीं कर सकते, वो अल्लाह की ज़ात है जो परफेक्ट है। हज़रत अनस का बयान जो सही मुस्लिम में है वो क्या है, थोड़ा सा इससे मुख्तलिफ क्या है, मगर बड़ी हद तक इसी की मदद हो रही, यानी मिलते जुलते बयान मुख्तलिफ अहादीस में इस बारे में हम पढ़ रहे हैं इस वक्त। हज़रत अनस ने क्या फरमाया कि हमने मक्का फतह किया, फिर हुनैन पर चढ़ाई की। मुशरिकीन इतनी उम्दा सफ़े बना कर आए जो मैंने कभी ना देखी। सवारों की सफ़, फिर पैदल चलने वालों की सफ़, फिर इनके पीछे औरतें, फिर भेड़ बकरियां, फिर दूसरे चौपाए। हम लोग बड़ी तादाद में थे, सो हमारे सवारों के मेमना यानी दाई हाथ राइट हैंड पे जो लोग थे इन पर हज़रत खालिद बिन वलीद मुकर्रर थे, मगर हमारे सवार दुश्मन की तीरंदाजी की वजह से हमारी पीठ के पीछे पनाहगीर होने लगे। और ज़रा सी देर में हमारे सवार भाग खड़े हुए, आराब भी भाग गए और वो लोग भी जिन्हें तुम जानते हो। नाम नहीं लेना चाहा, ये भी खूबसूरत अदब था, यानी भगदड़ मच गई मुसलमानों में। बहरहाल जब भगदड़ मची तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाईं तरफ होकर पुकारा, लोगों मेरी तरफ आओ, मैं अब्दुल्लाह का बेटा मोहम्मद हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वक्त इस जगह आपके साथ चंद मुहाजरीन और अहले ख़ानदान के सिवा कोई न था। इन नाजुक तरीन लम्हात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेनज़ीर शुजात का ज़हूर हुआ, यानी इस शदीद भगदड़ के बावजूद आपका रुख कुफार की तरफ था और आप पेश कदमी के लिए अपने खच्चर कोड़ लगा रहे थे और ये फरमा रहे थे, अनन नबी युला कदिब अन अपनो अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूँ ये झूठ नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। लेकिन इस वक्त अबू सुफियान बिन हारिस ने आपके खच्चर की लगाम पकड़ रखी थी और हज़रत अब्बास रजी अल्लाह अन्हों ने रकाब थाम रखी थी। दोनों खच्चर को रोक रहे थे कि कहीं तेज़ी से आगे ना बढ़ जाए। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हो को, जिनकी आवाज़ खासी बुलंद थी, हुक्म दिया कि सहाबाए कराम को पुकारें। हजरत अब्बास कहते हैं, मैंने नहायत बुलंद आवाज़ से पुकारा, दरख्त वालो, बैत रिजवान की तरफ इशारा, कहाँ हो? वल्लाही वो लोग मेरी आवाज़ सुनकर इस तरह मुड़े जैसे गाय अपने बच्चों पर मुड़ती, और जवाबन कहा, हाँ हाँ आए आए। क्या पता चला कि जब हौसले ज़रा से कमज़ोर होने लगे, जब लोग डीमोरलाइज्ड होने लगे या डीमोटिवेटेड होने लगे, तो लीडर्स का, बड़ों का काम होता है कि वो उनके अंदर रग़बत दिलाएं और उनको दोबारा उसी चीज़ की तरफ बुलाएं जिसके लिए वो पहले कमिट कर चुके थे। हालत ये थी कि आदमी अपने ऊँट को मोड़ने की कोशिश करता और वो ना मोड़ पाता तो अपनी जिरा इसकी गर्दन में डाल फेंकता और अपनी तलवार और ढाल संभाल कर ऊंट से कूद जाता। यानी इतने एक्साइटेड हो गए कि जानवर अगर साथ नहीं दे रहा तो उसको छोड़कर पैदल चलने को तैयार है, और ऊंट को छोड़ छाड़ कर आवाज की तरफ दौड़ता। इसी तरह जब आपके पास 100 आदमी जमा हो गए तो उन्होंने दुश्मन का इस्तकबाल किया और लड़ाई शुरू कर दी। क्या पता चला, इन कामों में कभी कभी ऐसे वक्त भी आ जाते हैं कि फौरन डिसीजन लेना पड़ता है। उस वक्त इंसान के पास इतना भी वक्त नहीं होता कि ये सोचे कि ठीक क्या है और गलत क्या है, और अमली काम करने की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद अंसार की पुकार शुरू हुई, ओ अंसारियो, ओ अंसारियो। फिर ये पुकार बनू हारस बिन खजरज के अंदर महदूद हो गई। इधर मुसलमान दस्तों ने जिस रफ्तार से मैदान छोड़ा था, इसी रफ्तार से एक के पीछे एक आते चले गए, और देखते देखते फरीकैन में धुआंधार जंग शुरू हो गई। क्या पता चला कि थोड़े से लोग जब खड़े हो जाते हैं ना, तो बाकियों के भी हौसले बुलंद हो जाते हैं। एक भागता है तो बाकी भी भागने लगते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान जंग की तरफ नज़र उठाकर देखा तो घमसान का रन पड़ा था, यानी दू बदू फेस टू फेस लड़ाई हो रही थी। फरमाया, अब चूल्हा गर्म हो गया। यानी अल्लाह के नबी को अच्छा लगता था काम को होता देखकर, और गर्मा गर्मी देखना, आपको जोश का कम होना पसंद नहीं था। फिर आपने ज़मीन से एक मुट्ठी मट्टी की लेकर दुश्मन की तरफ फेंकते हुए फरमाया, शाहतिल वुजू, चेहरे बिगड़ जाएं। ये मुट्ठी भर मट्टी इस तरह फैली कि दुश्मन का कोई आदमी ऐसा न था जिसकी आंख इससे भर न गई हो। इसके बाद उनकी कुव्वत टूटती चली गई और इनका काम जवाल पजीर होता चला गया। देखिए, लीडरशिप यही होती है, जहाँ सब पीछे हो जाएं आप खड़े हो जाएं। बंदों पे नजरें नहीं लगानी, बंदे काम करने वाले हैं, पीछे से अल्लाह का हाथ है जो आपकी मदद करता है। तो अल्लाह के नबी का ये जुर्रतमंदाना, जो कह लीजिए कि अमल था, इसने फिर शिकस्त को फतह में बदल दिया। कैसे, देखिएगा। दुश्मन की शिकस्ते फाश मट्टी फेंकने के बाद चंद ही सातें गुजर रही थी कि दुश्मन को फाश शिकस्त हो गई। सकीफ के तकरीबन 70 आदमी कत्ल किए गए, और इनके पास जो कुछ माल, हथियार, औरतें और बच्चे थे, मुसलमानों के हाथ आए। यही वो तगैयुर यानी तब्दीली है जिसकी तरफ अल्लाह सुबहाना ताला ने अपने इस कौल में इशारा फरमाया, वयौम हुनैन इज़ अअजबतकुम कसरतुकुम फलम तुग़नि अन्कुम शैअ वज़ाक़त अलैकुम अल-अर्ध़ु बिमा रहुबत सुम्मा वल्लैतुम मुदबिरीन सुम्मान्ज़लल्लाहु सकीनतहू अला रसूलिही वअलल मोमिनीन वअन्ज़ल जुनूदन लम तरौहा वअज़्ज़बल्लज़ीना कफरू वज़ालिका जज़ाउल काफिरीन। सूरह तौबा की आयत 25-26 है। और अल्लाह ताला ने हुनैन के दिन तुम्हारी मदद की जब तुम्हें तुम्हारी कसरत ने गरूर में डाल दिया था, बस वो तुम्हारे कुछ काम ना आई और ज़मीन कुशादगी के बावजूद तुम पर तंग हो गई। फिर तुम लोग पीठ फेर कर भागे। फिर अल्लाह ताला ने अपने रसूल और मोमिनीन पर अपनी सकीनत नाजिल की और ऐसा लश्कर नाजिल किया जिसे तुमने नहीं देखा, और कुफर करने वालों को सजा दी, और यही काफिरों का बदला है। क्या पता चला कि अल्लाह ताला हालात को एक मिनट में बदल सकता है। ताकुब शिकस्त खाने के बाद दुश्मन के गिरोह ने ताइफ का रुख किया, एक नखला की तरफ भागा, एक ने औतास की राह ली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू आमिर अल अशरी रदी अल्लाहु अन्हो की सरकर्दगी में ताकुब करने वालों की एक जमात औतास की तरफ रवाना की। फरीकैन में थोड़ी सी झड़प हुई, इसके बाद मुश्रिकीन भाग खड़े हुए। अलबत्ता इसी झड़प में इस दस्ते के कमांडर अबू आमिर अशरी रदी अल्लाहु अन्हो शहीद हो गए। मुसलमान शख्स सवारों की एक दूसरी जमात ने नखला की तरफ पसपा होने वाले मुश्रिकीन का ताकुब किया और दुरैत बिन समा को जा पकड़ा, जिसे रबिया बिन रफ़ी ने कत्ल कर दिया। शिकस्त खुर्दा मुश्रिकीन के तीसरे और सबसे बड़े गिरोह के ताकुब में जिसने ताइफ की राह ली थी, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माले गनीमत जमा फरमाने के बाद रवाना हुए। इस जंग में क्या माले गनीमत मिला? कैदी 6,000, ऊंट 24,000, बकरियां 40,000 से जायद। नोट करिएगा जरा फिगर्स को, इतनी हजारों बकरियां, इतने हजारों ऊंट। और वो याद कीजिए, अगर उस दुरैत की बात मान ली होती मालिक ने तो आज इतना नुकसान तो उनका ना होता। इसी तरह चांदी 4,000 रुकिया, 1,60,000 दिरहम, जिसकी मिकदार 6 क्विंटल से चंद ही किलो कम होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब को जमा करने का हुक्म दिया। फिर इसे जेराना में रोक कर हजरत मसूद बिन अमर गफ्फारी की निगरानी में दे दिया, और जब तक गज़वा ताइफ से फारिग ना हो गए इसे तकसीम ना फरमाया। कितना माल मिला मुसलमानों को। याद रखिए, कुर्बानियाँ सिर्फ शुरू में देनी होती हैं, बाद में तो बरकतें और खैर समेटने में इंसान को थकन होने लग जाए और इससे भी ज़्यादा अल्लाह देने लग जाए। कैदियों में शीमा बिनते हारिस सादिया भी थी, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन थी। जब इन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया और उन्होंने अपना तारुफ कराया, तो इन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अलामत के ज़रिए पहचान लिया। फिर इनकी बड़ी कद्र इज़्ज़त की, अपनी चादर बिछा कर बिठाया और एहसान फरमाते हुए इन्हें इन्हीं की कौम में वापस कर दिया। तो ये था गज़वाए हुनैन, जिसका जिक्र कुरान में आ गया। तो आपके मेरे लिए सीखने की बहुत सारी बातें हैं। अल्लाह ताला हमारे फ़हम को खोल दे, हमें इसको समझने की तौफीक अता फरमाए। और ख़ास तौर पर देखिए, यह आखिरी अमल के आपने अपनी रज़ाई बहन की इतनी इज़्ज़त की, तो मुझे तो ऐसे लगता है कि अल्लाह के नबी मैदान जंग के भी लीडर थे, और दिलों को फतह करने के लिए रिश्तों नातों को निभाने के भी लीडर थे। अल्लाह ताला मुझे आपको बेहतरीन तरीके से इन सब चीज़ों पे गौर व फिक्र करते हुए अमल की तौफीक अता फरमाए। यहाँ पे ये टॉपिक पूरा हुआ।